ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
பிரம்ம விஜயான கேந்திர ஸ்ரீ கைலாசாசனக்கு பஞ்சம பீட்டாதீஸ்வர் பிரம்மலீன சுவாமி பிரேம்புரி மகாராஜிக்கு संस्मरण से संस्थापित अध्यात्म विद्यावन मुंबई में ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी जी के द्वारा रचित ब्रह्माष्टमी माला बोलो. सब पहले श्लोक एक दो श्लोक बोलो बिना देखे. मंगलम मंगलाचार्य नमस्कारो अभी रुको ना, ये कोई कंठस्थ किए, केवल कंठस्थ करने वाले बोले. भाई प्रथम दूसरा श्लोक बिना देखे जो बोल सकते बोलो. प्रथम प्रथम उसके बाद दूसरा. हाँ पहले प्रथम. हाँ मंगलम
मंगलम मंगलम
प्रथम श्लोक में मंगलम मंगलाराध्या नहीं, मंगलाराध्यम राध्या बोलते. मंगलम मंगलाराध्यम. हाँ अभी सब बोलना शुरू से देख करके. मंगलम मंगलाचर्या तथा मंगलकारकम् मंगलम मंगलाराध्यम सर्वम् नमस्कारो नमस्कर्ता नमस्कार्यो नमस्कृतिः नमस्करण साध्यं यत् सर्वं ब्रह्मास्मि नम्रतः अहं ब्रह्मा मम ब्रह्म महद्ब्रह्मा महत् तथा इदं ब्रह्मानिदं ब्रह्म सर्वं ब्रह्मास्मि सर्वतः कोऽहं कस्त्वं किमेतच्च न जानेऽहं कथञ्चन अवश्यमेव जाने तु सर्वं ब्रह्मास्मि सर्वतः राहुर्ग्रासाद् विनिर्मुक्तो यथा चन्द्रो विनिर्मलः मनो मे निर्मलं तद्वज् ज्ञातं ब्रह्मास्मि निर्मलं विवेच्य भूतिपूर्णं तद् विचार्य चितिपूर्णकं विलोक्यानन्दपूर्णं तज् जातो ब्रह्मास्मि तन्मयः विद्या विद्या विरोधेपि स्वरूपं न निवर्त्यते तत्त्वमेव तथा तस्यास्त तत्त्वमेव तया तस्यास्त तत्त्वं ब्रह्मास्मि संस्थितम् विद्या विद्या तृतीय श्लोक है. बोलना तृतीय श्लोक. अहम् ब्रह्मा मम ब्रह्म
महत् ब्रह्मा महत् इदं ब्रह्मानिदं ब्रह्म सर्वं ब्रह्मास्मि सर्वतः.
अहम् ब्रह्म. अहम् शब्द का अर्थ विचार नहीं करने से ये स्थूल शरीर लगता अहम मैं. कोई पूछेगा तुम कौन हो, देखा ही मैं हूं. अहम देवदत्त यज्ञ नाम बताएगा, शरीर को दिखाएगा, अरे तुम कौन हो, फिर नाम कहेगा, ये तो तुम्हारा नाम है, तुम कौन है। पूछा जाए तो बहुत समझदार व्यक्ति, बड़े बड़े विज्ञान अभिमान रखने वाले, तुम कौन हो, क्या उत्तर देना बताओ। और कोई कहे हम ब्रह्म, ब्रह्म क्या है। अहम शब्द से कोई कहे ब्रह्म, ब्रह्म क्या है। अहम शब्द का क्या अर्थ है। मैं मनुष्य हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, ये तो शरीर में मोटा पतला है। मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, छोटा हूं, बड़ा हूं, ये तो शरीर का धर्म है। और नाम कहे, नाम तो शब्द है। आप क्या शब्द है, क्या शब्द नहीं। फिर दिखाएंगे, इधर देखे मैं हूं, हाथ पैर दिखाएंगे, कहते हम पश्चामी, हम श्रुणमी, मैं देखता हूं, सुनता हूं, देखने सुनने वाले इंद्रिय आप है। हम सोचामी, हम चिंतयामी, संकल्प करने वाले मन आप है। हम निश्चिनमी, मैं निश्चय करता हूं, बुद्धि आप है। हम अहम कहकर बहुत कहते, किंतु ये सब को जानने वाला मैं हूं, बुद्धि को भी जानने वाला मैं हूं। आपकी बुद्धि, आपके शरीर, आपके इंद्रिय, आपके मन, आपके प्राण, इसको जानने वाला आप है। वो जो अहम शब्द का लक्ष्यार्थ है, वाच्यार्थ तो ये जो कहा जाता है चिदाभास। जीव शब्द का स्वरूप क्या है, किसको मालूम है। श्लोक बताया था, प्राणानां धारणा जीव संसारेण संयुज्यते। चैतन्यम यदधिष्ठानम लिंग देहश्चय पुनः चिच्छाया लिंग देहस्था तत्संगो जीव उच्यते। जीव क्या है, जीव का क्या स्वरूप है। चैतन्यम यदधिष्ठानम, अधिष्ठान चैतन्य है जो सर्वव्यापक है। लिंग देहश्चय पुनः, लिंग देह सूक्ष्म शरीर जिसमें पांच ज्ञानेन्द्र, पांच कर्मेन्द्र, पांच प्राण और मन बुद्धि मिला तो 17 हो जाएगा। मन बुद्धि चित्त अहंकार चार करो तो 19 हो जाएगा। लिंग देहश्चय पुनः चिच्छाया लिंग देहस्था, लिंग शरीर में बुद्धि में चिदाभास, तत्संग समुदाय को जीव कहा जाता है। अधिष्ठान चैतन्य भी है, चिदाभासी भी है। वाच्यार्थ है चिदाभास, उसके संबंध से शरीर आदि में हम बुद्धि करते हैं। लक्ष्यार्थ है अधिष्ठान चैतन्य, वे अधिष्ठान चैतन्य को समझ ले अहम अस्मि परम ब्रह्म। जो अधिष्ठान चैतन्य वही अहम ब्रह्म। अहम ब्रह्म में अहम शब्द का अर्थ ये परिचिन देह नहीं है। परिचिन देह अहम शब्द का अर्थ होगा तो ब्रह्म कैसे होगा। ब्रह्म तो व्यापक अपरिचिन नाम रूप रहित। अहम ब्रह्म करते समय अहम शब्द का लक्ष्यार्थ कूटस्थ चैतन्य लेना, जो बुद्धि को भी जानने वाला, बुद्धि को जानने वाला आप ही, जागर स्वप्न सुश्रुति तीन अवस्था को जानने वाले वही अहम ब्रह्म। तो आपका क्या स्वरूप होगा, मम ब्रह्म, मम स्वरूप ब्रह्म। या मम ब्रह्म में मैं अलग, ब्रह्म अलग नहीं है, गौण प्रयोग है। मेरा स्वरूप ब्रह्म, स्वरूप तो मैं ही हूं ब्रह्म। और ब्रह्म कैसा है, ब्रह्म शब्द का अर्थ व्यापक है, महद ब्रह्म, व्यापक ब्रह्म है। यदि व्यापक ब्रह्म है सो परिचिन वस्तु क्या है, ब्रह्म से भिन्न है। इसे कहते अमहद ब्रह्म, जो महत नहीं परिचिन वो भी ब्रह्म है। क्योंकि ब्रह्म है देश काल वस्तु परिच्छेद रहित। देश परिच्छेद रहित का थे किसी देश में ब्रह्म का अभाव नहीं। काल परिचिन ब्रह्म नहीं, अर्थात ब्रह्म नित्य है, किसी समय ब्रह्म का अभाव नहीं होता है। ब्रह्म वस्तु परिचिन भी नहीं है, वस्तु परिचिन होता है, एक वस्तु से दूसरा वस्तु भिन्न है, दूसरा वस्तु से और वस्तु भिन्न है, उस वस्तु परिचिन। ब्रह्म से यदि कोई भिन्न वस्तु मानेंगे तो ब्रह्म वस्तु परिचिन हो जाएगा। यदि ब्रह्म वस्तु परिचिन हो जाए तो ब्रह्म को अनंत नहीं कहा जाएगा। तैतृ उपनिषद में आया था अनंतम ब्रह्म अविद्यमान अंत यस्य, अंत का परिच्छेद, जिसका एक भी परिच्छेद नहीं हो, देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद, तो अनंतम ब्रह्म। वस्तु परिचिन नहीं, अर्थात ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे जब परिचिन वस्तु दिखते हैं वह भी ब्रह्म ही है। भेद परिच्छेद ये तो अज्ञान के कारण कल्पित है। जो ब्रह्म सर्वत्र अनुगत है, छोटे वस्तु भी अस्ति सद अस्ति अस्ति परमाणु आदि छोटे छोटे परिच्छिन्न वस्तु भी सर्वत्र अस्ति 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 सत 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 करते हैं, और ब्रह्म सर्वानुगत है। महत ब्रह्म और जो अमहत रूप से दिखता है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं, कुछ मान ले तो ब्रह्म परिच्छिन्न वस्तु परिच्छिन्न हो जाएगा। जो वस्तु परिच्छिन्न होगा परिच्छिन्न ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म शब्द का अर्थ अपरिच्छिन्न। ब्रह्म में देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद कुछ नहीं। अर्थात ब्रह्म का कहीं भी किसी देश में अभाव नहीं, किसी काल में अभाव नहीं, कोई वस्तु ब्रह्म से भिन्न भी नहीं। तब वासुदेव सर्वम भगवान का वाक्य प्रमाण है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम। सर्वम वासुदेव, वासुदेव से भिन्न कुछ भी नहीं। तो महत भी ब्रह्म अमहत तथा सब ब्रह्म है। फिर ब्रह्म महत अमहत किसको? इदम इदम तो न प्रत्यक्ष जितने दिखता है नाम रूपात्मक वस्तु तो सब ब्रह्म ही है। ब्रह्म नाम रूप वाला है, ये सब नाम रूप वाला ब्रह्म होगा कैसे? तो बाद समानाधिकरण सर्वम ब्रह्म, सर्वम नाम रूपात्मक दिखता है, नाम रूप नहीं किंतु ब्रह्म है। जिसको सर्प समझकर डर कर भाग रहे थे, आकर देखा रज्जु है, बोलते सर्प रज्जु है। क्या कहते? सर्प रज्जु। सर्प रज्जु कैसे होगा? जिसको सर्प समझ रहे थे वो सर्प नहीं है किंतु रज्जु है। सर्प रज्जु में सर्प का निषेध करके रज्जु का विधान किया जाता है। सर्प रज्जु है अर्थात सर्प जिसको तुम सोते हो वो तो रज्जु है, सर्प नहीं है। इसी प्रकार सर्वम ब्रह्म का ये अर्थ है। सर्वम नाम रूपात्मक अनेक जो दिखता है वो नाम रूपात्मक अनेक नहीं है किंतु ब्रह्म है। इसलिए इदम ब्रह्म, इदम तो न गृहमान जितने है सब ब्रह्म है। और जो नहीं दिखता है वो क्या होगा? अनिदम ब्रह्म। जो इदम तो गृहित नहीं तो वो भी ब्रह्म। जो भी यदस्ति यदभाति तदात्म रूपम, जो है जो दिखता है जो है, नान्य ततो भाति न चान्यदस्ति, उससे भिन्न ना दिखता है ना है। इदम ब्रह्म अनिदम ब्रह्म, जो प्रत्यक्ष दिखता है ब्रह्म, जो नहीं दिखता है भी ब्रह्म है। ब्रह्म से भिन्न ब्रह्म है सद रूप, उससे भिन्न क्या होगा? असत। सत से भिन्न असत, असत सत से विषाण बंध्या पुत्र है ही नहीं। जो असत है असत ब्रह्म क्या होगा? असत दे ही नहीं कुछ, असत कुछ है ही नहीं, तो सब कुछ ब्रह्म ही है। इदम ब्रह्म अनिदम ब्रह्म, तो फिर अब क्या बचा? सर्वम ब्रह्म। सर्वम कलिदम ब्रह्म सांदिक उपनिषद आया। सर्वम ब्रह्म का क्या अर्थ है? सर्वम नास्ति किंतु ब्रह्म है। सर्व नाम रूपात्मक होने की दिखता वो नहीं किंतु ब्रह्म है। बाद समानाधिकरण जैसे चौर स्थानु सर्प रज्जु, सर्प नहीं किंतु रज्जु है। सर्वम नाम रूपात्म है नहीं किंतु ब्रह्म, ब्रह्मास्मि सर्वतः। और ब्रह्म कहाँ है? आगे पीछे बाएं दाएं ऊपर नीचे सब सर्वत्र है, सर्व ब्रह्म ही है। फिर बोलना श्लोक, अहम् ब्रह्म कोऽहं कस्त्वं किमेतच्च न जाने हं कथंचन अवश्यमेव जानेतु सर्वं ब्रह्मास्मि सर्वथा। राहुर्ग्रासाद विनिर्मुक्तो यथा चंद्रो विनिर्मलः मनो मे निर्मलं तद्वज ज्ञातं ब्रह्मास्मि निर्मलम्। विविच्य भूति पूर्णम तद विचार्य चिति पूर्णकम् विलोक्यानंद पूर्णम तज जातो ब्रह्मास्मि तन्मयः विद्या विद्या विरोधेपि
विद्या विद्या विरोधेपि
स्वरूपं न निवर्त्यते तत्त्वमेव तया तस्याः तत्त्वं ब्रह्मास्मि संस्थितम्
विद्या विद्या विरोधेपि स्वरूपं न निवर्त्यते तत्त्वमेव तया तस्याः तत्त्वं ब्रह्मास्मि संस्थितम्।
कृष्ण यजुर्वेदीय तैतरीय उपनिषद चल रही थी। आनंद विचार किया गया, जितने आनंद विचार का ही निर्णय सारे सोगुणा सोगुणा आनंद करते करते जाकर के हिरण्यगर्भ का आनंद है, किंतु जो परिपूर्ण आनंद आपका स्वरूप है उसमें कोई हिसाब नहीं। इसके साथ ये जितने आनंद है सब आनंद मिल करके उसके कुछ एक अंश भी नहीं होगा, क्योंकि मुख्य आनंद स्वरूप है। ये सब जितने आनंद आप सुख आभास है, वास्तव आनंद नहीं है। नित्य नित्य से आनंद है, शुद्ध ब्रह्म है आनंद। और पहले जितने सोगुणा सोगुणा मनुष्य आनंद से लेकर कहा गया, सब में श्रोत्रिय अकाम हतो को प्राप्त होता है। उसमें ये समझने का है जितने कामना है सब की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा निश्चय है क्या? चाहने पर कुछ मिल जाएगा सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा तो दुख मिलेगा। चाहते समय भी दुख, चाहने पर मिलेगा खत्म हो जाएगा दुख है। मिल भी जाए तो जितने दुख है जितने सुख है, यदि विवेक से वो कामना को छोड़ दिया मिलने पर सुख मिलेगा, यदि विवेक से वो कामना का त्याग कर दिया तो मिलने पर जो सुख मिलता है उसे सो गुणा सुख है काम त्याग से। यही सौ में आया, जिस कामना का त्याग कर दे उस सुख से सो गुणा सुख प्राप्त होता है। इसलिए काम्य वस्तु की प्राप्ति से जो आनंद है, काम्य वस्तु की कामना यदि छोड़ जाए उसे सो गुणा आनंद है। कामना छोड़ना सरल नहीं है वासना, किंतु ये वेदांत विचार करके विवेक करके यदि कामना का त्याग कर दे तो उसे अधिक आनंद। इसलिए यही करने का है साधक को, जो विषय की इच्छा कामना है उसका त्याग करना। और कामना करने पर जो चाहेगा मिलेगा कोई जरूरी नहीं है, प्रारब्ध नहीं तो जितने चाहने पर भी नहीं मिलेगा। अच्छा, यदि प्रारब्ध में है नहीं चाहेगा क्या मिलेगा नहीं मिलेगा? कर्म में है नहीं चाहने पर भी मिलेगा, और चाहने पर कर्म में नहीं तो चाहने से क्या लाभ हुआ? चाहने से कुछ अधिक हो गया? नहीं, नहीं चाहने से, बल्कि चाहने पर दुख शुरू हो गया। मिलेगा कभी? पहले से इच्छा करता है मिल जाए तभी से दुख शुरू हो गया। और यदि विवेक करके विचार कर दे निश्चय कर दे प्रारब्ध में तो मिलेगा तो नहीं, किसी भी कामना धन संपत्ति हो प्रतिष्ठा हो पद हो आयु अधिक कुछ भी हो आरोग्य सब चाहते हैं, यदि अपने प्रारब्ध में तो प्राप्त होगा नहीं तो नहीं प्राप्त होगा। और यदि विचार करके विवेक कर निर्णय कर ले कि कुछ नहीं चाहिए, एक परमात्मा की प्राप्ति हो इसके लिए मैं जीवन समर्पण करता हूं, यही मुझे चाहिए, जितने हो गया बहुत हो गया, ऐसा करके जितने जितने इच्छा का त्याग करता है इतने इतने सुख प्राप्त करता है। सर्वेच्छानां परित्यागे दुखम क्वापि न दृश्यते, इच्छा ही दुख देने वाली है। एक एक इच्छा का यदि छोड़ता है तो दुख कम होता है। जो ज्यादा इच्छा जिसकी है इतनी दुखी है, संपत्ति होने पर भी इच्छा अधिक है तो दुख अधिक है, विषय अधिक होने पर भी इच्छा बढ़ने पर दुख अधिक है। लगता है वस्तु प्राप्त होने पर सुखी हो जाएंगे, किंतु वो वस्तु प्राप्त होते ही आगे बड़े वस्तु दिखती है। जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हैं, लगता उसको मिल जाए तो आगे शांत हो जाएगी, वो मिलते ही मिल तो गया आगे दिखता है, पास में किसके पास उससे बड़ा है। हमको तो मिल गया किन्तु हमारे पास वाले के पास बड़ा है, आगे कोई बड़ा दिखता है, फिर लगा वो मिल जाए तो और कुछ नहीं चाहिए। ठीक उसको ये पहाड़ में जो चढ़ते हैं, कभी चलकर जाते हैं पहाड़ में चढ़ते हैं, थोड़ा थक जाते कहते बैठेंगे तो थोड़ा दिखता है ऊंचा तल, वहां तक चढ़ जाएंगे वहीं बैठेंगे, फिर वहां तक चढ़ जाते देखते रास्ता इधर फिर ऊपर आ रहा, फिर चलते चलाओ दस दस फीट वहां चल जाएंगे, फिर वहां बैठेंगे, वहां जाने के बाद पहाड़ में सब तो ऐसा ऐसा रास्ता, वहां जाने का देखा उधर रास्ता है तो थोड़ा सा ऊपर वहां जाओ ऐसे, और पहाड़ एक पहाड़ पार कर लिया आगे देता और एक पहाड़ है, उस पहाड़ को पार कर लिया और एक पहाड़ है। इसी प्रकार जितने मिल गया वो तो मिल गया अपना हो गया, जो मिल गया अपना हो गया, जो नहीं मिला वो दिखता है, जो मिला हुआ वो नहीं दिखता है, जो आगे दिखता है ये आगे आगे बढ़ता है। ये जो विवेक है साधक है, जो मिला पर्याप्त है, जो प्रारंभ में बहुत हो गया विचार करे, दुखे दुखाधिकान पश्चे सुखे पश्चे सुखाधिकान, दुख मिलता है तो हमसे कितने दुखी उनको देखो, आपको दुख मिलता है तो मैं बड़ा दुखी मेरा बड़ा दुखी रोते हैं, आप विचार कर आपसे दुखी कितने अधिक है, और सुख मिलता है तो बड़ा खुश हो कि मैं बड़ा सुखी बड़े संपन्न बुद्धिमान बड़ा, किंतु आपसे भी सुखी बहुत ही, आपसे धन संपन्न वाला बहुत ही, इसे दुख मिला तो दुख अधिक दुख वाले को देखो, सुख मिला तो अधिक सुख वाले को देखो, सुख से जितना अधिक मिलने पर कोई संतोष नहीं होता है, यदि संतोष है जो आपके पास है उसे संतोष, जितने अभी आपके पास है इतने में संतोष हो गया तो संतोष है, अधिक मिलने पर संतोष हो जाएंगे ये आशा छोड़ देना, अधिक मिलने पर और अधिक नहीं दिखेगा, आगे अधिक ही दिखेगा, वो अधिक मिल जाने पर उसे अधिक नहीं और अधिक दिखेगा, ऐसे जितने है इसमें संतोष। ये सर्वेच्छान परित्यागे दुखों क्वापि न दृश्यते, इच्छाओं का त्याग प्रारब्ध में तो मिलेगा तो नहीं, नहीं, नहीं तो नहीं मिलेगा, इच्छाओं का त्याग कर दिया तो दुखों कोई कहीं नहीं है। सुखम आत्यंतिकम इच्छन त्यजेच्छाम दुख कारणम, आत्यंतिक सुख चाहते तो दुख के कारण इच्छा को छोड़ो, यतो यतो निवर्तते ततस ततो विमुच्यते, जहां से निवृत्त हो गया वहां से मुक्त हो गया, जिस जिसको प्राप्त करने के लिए सोच रखा है मिल जाए पकड़ रखा है, जहां से निवृत्त हो गया नहीं चाहिए छोड़ दो, नहीं जो छोड़ो जो होगा मिले नहीं मिले कोई बात नहीं, यतो यतो निवर्तते निवृत्त होता है ततस तत विमुच्यते, उससे मुक्त हो गया, जिससे वासना आसक्ति को छोड़ दिया उसे मुक्त हो गया। निवर्तनाधि सर्वतः, सबसे निवृत्त हो जाए तो न वेत्ति दुखम अनुअपी, अनुअपी दुख नहीं प्राप्त करता है। यही है आनंद विचार करके कामना का त्याग, एक तो वेदांत विचार करके मिथ्या तो निश्चय करो, अथवा ये नहीं होता है प्रारब्ध कर्म में है इतने मानना पड़ता है, सब लोग प्रयत्न करने पर भी सबको समान सुख नहीं मिलता है, प्रयत्न करने अधिक प्रयत्न करने वाले अधिक सुख प्राप्त करता है, ऐसा है क्या? कोई कम प्रयत्न करता उसको बहुत प्राप्त है, कोई दवाई बहुत खाए तो हमेशा स्वस्थ रहता है क्या? कोई स्वस्थ व्यक्ति कभी जीवन भर दवाई नहीं खाया, ऐसे लोग है पहले लोग होते हैं कि वो बड़े है कि अब जीवन भर दवाई नहीं खाए वो सुखी है, रोज इतने इतने दवाई खाने वाले सुखी है, जो सुखी एक दवाई भी नहीं खाया, कोई किसको अभिशाप देते हैं तो कहे तुम्हारे घर में डॉक्टर रोज आए, और एक खुशी है कि हम डॉक्टर के पास नहीं गए, प्राण कर भगवान को दर्शन करते हैं, वैद्य राज का दर्शन नहीं करे कभी जीवन भर, वैद्य राज के यमराज कहते हैं तो वैद्य राज का दर्शन नहीं करे सबसे सुखी है। तो ये सुख दुख जैसे कर्म में है यही से विचार करे, प्रारब्ध में है तो जितने है ठीक है, अधिक कम नहीं होगा, ये इच्छा का छोड़ करके शांत होना चाहिए, कामना का त्याग, यही ये प्रकरण का तात्पर्य है। अंत में कहा जो यह पुरुषा में है और जो आदित्य में है वही सृष्टिकर्ता ही शरीर के अंदर प्रविष्ट हुआ, एक ही है तो एक ही है। वो श्रोत्रियों के प्रत्यक्ष कहा यंविद स य एवं विद, ऐसा जो ज्ञान प्राप्त करता है स अस्मा लोकात प्रेत्य एतम अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रामति, ये लोक से समाप्त प्रत्यय अन्नमय आत्मा को प्राप्त करता है। अन्नमय आत्मा को उपसंक्रामति जो कहा है, उपसंक्रमण